जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना किरावन चारी, यमुना किरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिष्ट वाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दसवां स्कंद चौदवा अध्याय ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। श्लोक संख्या 7। गुण आत्मनः अपि गुणान् विमातुम् हित हित अवतीर्णस्य के ईशिरे अस्य कालेन यैः वा विमिताः सुकल्पैः भूपांशवः के मेहिकाः द्युभासः गुणात्मनस्ते गुणान् विमातुम् हितावति तीर्णस्य न ईशिरेस्य इधर गलत छपा है सात है ये वो ये आठ है सात होना चाहिए और यहाँ भी गलती है इसमें अवतीर्णस्य होना चाहिए अवति री हो गया रीनस्य वहां सही होना चाहिए ये जरा नोट कर देना बीबीटी को लिखना चाहिए अवतीर्णस्य होना चाहिए हितावतीर्णस्य तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे मैं अकेले फिर कहता हूँ नंबर सात लिखा है लेकिन श्लोक आठवां है और दैव से श्लोक का विषय भी ऐसा ही कुछ है गुणात्मनस्ते गुणान् विमातुम् हितावतीर्णस्य क ईशिरेस्य कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पैर् भूपांशवः खे मेकाद्युभासः अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा समय के साथ विद्वान दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु हिम के कण या शायद सूर्य नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों को भी की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य श्रील सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण गुणात्मा हैं क्योंकि वे गुणों को जीवंत करते हैं उदाहरणार्थ उदारता बुद्धि तथा दया जैसे गुणों की विवेचना तो की जा सकती है किंतु वे सजीव तभी होते हैं जब कोई सजीव व्यक्ति उन्हें प्रकट करता है अतः कृष्ण गुणात्मा हैं क्योंकि वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और अपने ईश्वरीय गुणों को प्रकट करके तथा अन्यों में उनकी प्रेरणा देकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं जो जीव भगवान में प्राप्त दिव्य गुणों को विकसित करता है उसे असीम लाभ प्राप्त होता है और अनंत वह भगवत धाम जाता है, जहाँ जाने पर सारे जीव मुक्त हो जाते हैं और दिव्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी आगे यह भी बतलाते हैं कि भगवान हर जीव के लाभ हेतु एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इस सृष्टि में असंख्य जीव हैं, अतएव भगवान अनंत गुण प्रकट करते हैं। इस तरह प्रत्येक बद्ध जीव भगवान को विशिष्ट रूप से जान सकता है। यहां पर उदाहरण दिया गया है कि भले ही सबसे विद्वान पंडित गण पृथ्वी, हिम तथा प्रकाश के कणों की गणना कर लें, किंतु तो भी वे भगवान के गुणों को समझ नहीं पाएंगे। इस उदाहरण में पृथ्वी, हिम तथा प्रकाश उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं, अतएव उनके अनंत कणों की गणना कर सकना एक प्रकार से बहुत ही कठिन है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार भगवान संकर्षण जैसे महापुरुषों ने पृथ्वी के ही नहीं अपितु सारे ब्रह्मांड भर के परमाणुओं की संख्या की गणना की है, फिर भी संकर्षण जैसे व्यक्ति जो कि अनादि काल से भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान करते आ रहे हैं, उन गुणों की गणना के अंतिम दौर में भी नहीं पहुंच पाए। भगवान कृष्ण वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं के समय आश्चर्यजनक गुण प्रदर्शित करते हैं। वहां वे गोपियों का माखन चुराते हैं, अपनी सखियों के साथ नाचते हैं और अपने प्रिय संगी ग्वाल बालों के साथ उनके सर्वाधिक प्रिय सखा के रूप में क्रीड़ा करते हैं। यद्यपि ये सामान्य मानवीय क्रीड़ाएं प्रतीत होती हैं, किंतु इन दिव्य लीलाओं में कृष्ण के असंख्य सुंदर गुण निहित रहते हैं, जो शुद्ध भक्तों के जीवन आधार हैं। अनुवाद को दोहराइएगा। समय के साथ विद्वान दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु, हिम के कण या शायद सूर्य नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके। ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। बद्ध जीवों के कई लक्षण होते हैं। बद्ध जीव कौन है? जो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं, जो भगवान को भूल चुके हैं, अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल चुके हैं। तो विस्मृति होना या भूल जाना या गलतियां करना, ये स्वाभाविक है बद्ध जीवों के लिए। इसलिए कभी कभी हम सातवें श्लोक की बजाय आठवें श्लोक को लिख देते हैं, हो जाता है, गणना में गलती हो जाती है। यहां भी इसी श्लोक में ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि ये छोटी मोटी गणना की गलती के बाद तो दूर रही, भले ही ऐसे कोई पंडित पैदा हो जाए, बहुत मुश्किल है, प्राय असंभव है, परंतु यदि तर्क के लिए माना भी जाए कि ऐसे कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक हो, पंडित हो, दार्शनिक हो, जिन्होंने कुछ विशेष बुद्धि या क्षमता की वजह से हिम के कणों की गणना कर ली है, हिम की कणों की गणना करना कोई आसान बात नहीं है। या वो कहते हैं पृथ्वी के सारे परमाणुओं की गणना करना, हिम के कणों की गणना करना, अर्थात सूर्य नक्षत्र आदि ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की भी गणना करना, हमारे दृष्टि से ये तो असंभव है। परंतु यदि हम मान भी ले कि कोई ऐसे अद्भुत व्यक्ति ऐसे कर भी लेता है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों की गणना वो ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाएगा, संभव नहीं है। संकर्षण भगवान के अवतार हैं, उनके विस्तार हैं, और संकर्षण अनादि काल से भगवान का गुणगान करते आए हैं। फिर भी आज तक भगवान श्री कृष्ण के गुणों के अंत तक नहीं पहुंच पाए हैं, और शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि भगवान के गुण अनंत हैं। अनंत अर्थात जिनका कोई अंत ही नहीं है। तो ये है भगवान के का वर्णन। भगवान होने का मतलब क्या है? इस दुनिया में दुर्भाग्यवश अधिकांश लोगों को यह पता नहीं होता है कि भगवान कौन है। चलिए भगवान श्री कृष्ण है, उन्हें नहीं पता, ये चलिए दूसरी बात है, परंतु भगवान होने का मतलब क्या है? किस तरह की शक्ति, किस प्रकार का ऐश्वर्य होना चाहिए किसी में, इसके पहले कि हम उसे भगवान घोषित करें, इस बात का ज्ञान तनिक भी नहीं है लोगों में। एक बार हम रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे कई वर्षों पूर्व, तो एक आदमी मिले, हमसे चर्चा करने आए, और वो किसी एक साधु के शिष्य थे और अपने उनको अपना गुरु मानते थे, और उस गुरु को वो भगवान कहते थे कि मेरे गुरु भी भगवान हैं। तो हमने भगवद गीता के ज्ञान के आधार पर उन्हें बताया कि देखिए, आप अपने गुरु का सम्मान कर रहे हैं, करना चाहिए, ये सब ठीक है, परंतु आपके गुरु भगवान नहीं हैं। वो शायद कोई योगी थे, थोड़े कुछ चमत्कार वगैरह करते थे शायद। नहीं नहीं, आप नहीं जानते, मेरे गुरु ऐसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, उन्होंने कुछ चमत्कारों का वर्णन किया। तो हमने कहा, ऐसे छोटे मोटे चमत्कारों का दिखाने से कोई भगवान नहीं बनता। कि क्योंकि आप ये नहीं जानते कि भगवान का मतलब क्या है, किस तरह के ऐश्वर्य उनमें होने चाहिए, किस मात्रा में होनी चाहिए। आप ऐसे अज्ञान के वशीभूत होकर आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य भगवान है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के लिए इस तरह के चमत्कार करना संभव नहीं है या बहुत मुश्किल है। तो जो व्यक्ति ऐसे चमत्कारों को कर दिखाता है, जो अज्ञानी लोग होते हैं ऐसे व्यक्तियों को भगवान कह के घोषित कर देते हैं। किसी ने कोई सोना कहीं से उत्पन्न कर दिया तो उसे भगवान कह देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि देखो, थोड़ा सा सोना निकालने से कोई भगवान नहीं बनता। भगवान ने अनंत सोने के खान बनाए हैं, केवल पृथ्वी पर नहीं, प्रत्येक लोक पर और हर एक ब्रह्मांड में। तो भगवान वो हैं जो कि सारे अनंत सोने के खानों का निर्माण करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने थोड़े से एक तोला सोना निकाल दिया तो वो भगवान हो गया, ऐसे नहीं होता। तो अक्सर गलती हम ये करते हैं अपने अज्ञान में कि अपनी शक्ति की तुलना के तुलनात्मक दृष्टि से देखकर हम सोचते हैं कि अरे भगवान की शक्ति कितनी होगी, हमसे थोड़ी ज्यादा होगी तो फिर ये भगवान हो जाएंगे। पिछली बार आपको याद होगा हमने एक न्याय सूत्र का उल्लेख किया था। आप में से जो पिछले रविवार के प्रवचन में थे, आप में से कोई बता सकते हैं कि कौन से न्याय सूत्र का उल्लेख हुआ? सुप्तोत्थित न्याय। पहले पिछले रविवार को हम वर्णन कर रहे थे कि सूत्र शब्द का अर्थ क्या होता है। जब कोई महत्वपूर्ण ज्ञान है, कोई तत्व है, उसे जब संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में, 3-4-5 शब्दों में, तो उसे सूत्र कहा जाता है। तो ऐसे न्याय के अनेक सूत्र हैं शास्त्रों में। तो दार्शनिक तत्वों को, दार्शनिक ज्ञान को अच्छी तरह से समझने के लिए ये न्याय के सूत्र बहुत ही लाभदायक होते हैं। पिछली बार हमने ये भी उदाहरण दिया था कि केवल दार्शनिक तत्वों के प्रकाशन के लिए ही नहीं, सांसारिक ज्ञान के लिए भी ऐसे अनेक कहावत होते हैं, मुहावरे होते हैं, सुभाषित होते हैं, जैसे अंगूर खट्टे हैं, है ना, ये भी सूत्र के समान है। तो पिछली बार सुप्तोत्थित न्याय इस सूत्र का वर्णन हम कर रहे थे। सुप्त अर्थात सोए हुए, उत्थित अर्थात जागे हुए। तो नींद से जागने का न्याय, निद्रा की अवस्था से जागृत अवस्था को प्राप्त करने का न्याय। तो इसका क्या तात्पर्य था? जिस तरह हम नींद से जागते ही तुरंत पहचान लेते हैं अपने आप को और समझ लेते हैं कि मैं कहाँ हूं और मुझे क्या करना है, किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे ही हम नींद से जागते हैं तो कोई आके हमसे कहता है कि देखो आपका नाम फलाना है और आप, ये आपकी पत्नी है, ये आपके पति हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये आपका घर है, आप इस तरह की नौकरी करते हो, अभी जागिए, फिर से बीकॉम करके फिर से नौकरी करिए। नहीं, अपने आप ही आपको ज्ञान हो जाता है और फिर आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। तुरंत उठ के स्नान करने जाते हैं, फिर स्नान करके नाश्ता करके माला वगैरह करते हैं, फिर निकल जाते हैं अपने नौकरी या व्यवसाय के लिए। तो जिस तरह से नींद से जागने के बाद तुरंत हमें पता चलता है कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है, ठीक उसी तरह से मृत्यु के बाद जब हमें एक नया शरीर मिलता है हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार, तो तुरंत हमें पता चलता है कि मैं कौन हूं। मैं एक जानवर हूं, कुत्ता हूं, बिल्ली हूं, मैं मनुष्य हूं, देवता हूं, और मुझे इस तरह से कार्य करना है, इस तरह का भोजन मुझे पसंद है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तुरंत उसे पता चल जाता है। कुत्ते को पता चलता है कि मुझे भौंकना है, उसे पता चलता है कि मुझे अमुक प्रकार का भोजन चाहिए। मनुष्य को पता चलता है कि किस तरह का भोजन उसे चाहिए। इस तरह से जब मृत्यु, जो कि निद्रा के समान है, उससे हम पुनर्जन्म प्राप्त कर लेते हैं, तो तुरंत पता चलता है भगवान की कृपा से, वो भगवान जो अंतर्यामी के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। तो ठीक उस तरह जैसे मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है और हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, ठीक उसी तरह से ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में, जबकि केवल ऊपरी जो लोक हैं ब्रह्मांड के भीतर वो रह जाते हैं, और प्रलय के कारण जितने भी अन्य लोक हैं वो सब डूब जाते हैं पानी में, और जितने भी जीवात्माएं जो बद्ध अवस्था में अभी तक हैं, जो मुक्त नहीं हुए हैं अभी तक, वो भगवान विष्णु में विलीन होते हैं थोड़े समय के लिए। कितने समय के लिए? ब्रह्मा जी के रात्रि के अवधि पर्यंत। जब ब्रह्मा जी की रात समाप्त हो जाती है तो पुनः वही बद्ध जीव जो 43 लाख साल पहले कोई कर्म कर रहे थे, वो तो भूल गए कि वो कौन से शरीर में थे उस समय, परंतु अब उनको कोई शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर के आधार पर फिर वो काम शुरू कर देते हैं। जिस तरह से ब्रह्मा जी की रात्रि के अंत में जब बद्ध जीव को नया शरीर मिलता है और वो अपने नए कार्य शुरू कर देता है, ठीक उसी तरह से ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में जब संपूर्ण सृष्टि का संहार होता है, उस समय भी सारे बद्ध जीव जो कि मुक्त नहीं हुए हैं अभी तक, वो भगवान महाविष्णु में रहते हैं, जब तक कि महाविष्णु अपने सांस को अंदर ले रहे होते हैं। फिर भगवान महाविष्णु जब सांस बाहर लेते हैं तो उनके रोम छिद्रों से अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, भौतिक सृष्टि प्रकट होती है। फिर अपने दृष्टिपात के द्वारा वो सारे जीवों को प्रकृति में प्रदान कर देते हैं, और 84 लाख योनियां भी फिर से प्रकट हो जाती हैं, और फिर हर एक बद्ध जीव अपने कर्मों के अनुसार फिर से कार्य प्रारंभ करता है। तो देखिए कितने स्तर हैं इस न्याय के, इस तुलना के। एक तो है हमारी रात की नींद, उससे पहले जो क्लास में बैठे हुए नींद भी है, चलो 10 क्षण की नींद, जागते ही याद आता है कि अरे हम तो क्लास में बैठे हैं, सुनना चाहिए। तो रात की नींद, फिर मृत्यु की नींद, ब्रह्मा जी के रात्रि की नींद, और ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में जो ब्रह्मांड का संहार होता है वो नींद। ये सारी निद्राओं की अवस्था है बस। इसलिए जब हम इन चीजों को समझना चाहते हैं तो रात के नींद से जागने की अवस्था जो होती है हमारी, उससे तुलना की गई है ताकि हम आसानी से इन दार्शनिक तत्वों को समझ पाएं। इसलिए इसे कहते हैं सुप्तोत्थित न्याय, सुप्त उत्थित न्याय। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम और एक न्याय सूत्र की चर्चा करेंगे इस संबंध में, और वो है कूप मंडूक न्याय। कूप अर्थात कुआं, और मंडूक अर्थात मेंढक, मराठी में बेडूक कहते हैं, कन्नड़ में कोपी कहते हैं, कोपी कोपी। और कुआं तो आप जानते हैं, तो अक्सर कुएं के भीतर कोई ना कोई मेंढक मिलते हैं। जब पानी सूख जाता है तो बेचारे उनको तकलीफ होती है। आपके घर में कुएं हैं? कितने भक्तों के घर में कुएं हैं? आपके कुएं के अंदर मेंढक देखा क्या आपने? नहीं, क्योंकि आप भक्त हैं ना, तो आपके घर के आश्रय ले लिए उन्होंने, भगवान का ज्ञान उनको है। तो एक बार ऐसे हुआ कि एक कुएं में एक मेंढक रहता था, तो किसी न किसी तरह से एक और मेंढक वहां पे चले आया। वो मेंढक वैसे समुद्र के तट पे रहता था। वैसे प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि समुद्र के तट पे ज्यादा कोई मेंढक दिखाई नहीं पड़ते। आपने कोई देखे हैं कभी समुद्र के बिल्कुल तट पर? वो ज्यादातर छोटे तालाब में होते हैं या कोई कुएं में होते हैं, ऐसे जगह में मेंढक पाए जाते हैं। तो खैर कभी ऐसे हुआ भी होगा, गलती से अपने पथभ्रष्ट होकर कहीं गया होगा वो मेंढक, शायद वहां रह रहा होगा। तो वहां से घूमते 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 फिर से आ गया और वो गिर पड़ा उस कुएं में। जब गिरा तो दोनों मेंढकों ने एक दूसरे को देखा, भाई अरे तुम भी मेरे जैसे ही हो मेंढक। तो दोनों ने आपस में हरि बोल हरे कृष्ण जो भी है वो कर लिया। और फिर पहले मेंढक ने दूसरे मेंढक से पूछा, भाई कहां से आए हो? अरे मैं तो समुद्र से आया, समुद्र के तट से आया। समुद्र ये क्या चीज है? बोला पानी। अरे पानी तो ये भी है। हाँ वो भी पानी है। तो समुद्र और कुएं में क्या अंतर है? समुद्र में बहुत ज्यादा पानी है। अच्छा बहुत ज्यादा पानी है, कितना ज्यादा है? अब देखिए ये जो कुएं में रहने वाला मेंढक था कभी कुएं के बाहर गया नहीं था, इसलिए उसने देखा नहीं था कि तालाब क्या होता है, सरोवर क्या होता है, नदी क्या होती है, समुद्र की बात तो दूर रही। तो उसने अपने बुद्धि से सोचा, अपने अनुभव से उसने इतना ही पानी देखा था, तो उसने सोचा कि ठीक है समुद्र में बहुत ज्यादा पानी है। कितना पानी है? यहां कुएं में जितना पानी है उससे दोगुना ज्यादा? अरे नहीं नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा दो गुना नहीं तो कितना? चार गुना ज्यादा? अरे नहीं नहीं और बहुत ज्यादा। अरे भाई 10 गुना ज्यादा होगा ना, इससे ज्यादा थोड़ी हो सकता है। तो इस तरह से वो कुएं में रहने वाला जो मेंढक है बिल्कुल समझ नहीं पाया, उसकी कल्पना के बाहर थी, उसकी चिंतन शक्ति के बाहर ये बात थी कि समुद्र में कितना जल हो सकता है। वैसे हम भी जब समुद्र के तट पे खड़े रहते हैं तो हमारे लिए भी अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि समुद्र में कितना जल है। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां केवल जल ही जल दिखाई पड़ता है। आप में से कोई किसी नौके में गए हैं बीच समुद्र में? कोई गए हैं आप में बीच समुद्र में? तो जब बीच समुद्र में रहते हैं और चारों दिशाओं में आप देखते हैं जमीन नहीं दिखाई पड़ती, केवल पानी 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 सब जगह, कितना पानी है। तो मेंढक की बात दूर, हम इंसान होकर भी हम समझ नहीं पाते हैं, अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि कितना जल सागर में है। अब कितनी उस सागर की चौड़ाई है ये तो एक बात है, लेकिन सागर की गहराई कितनी है वो भी और है बात है। आजकल जो वैज्ञानिक हैं वो ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह के यंत्र विमान यान आदि भेज रहे हैं और वहां से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी ग्रह का, किसी लोक का, सूर्य का, यहां वहां। परंतु इतने दूर हम लोग यंत्र यान आदि भेज रहे हैं, परंतु हमारे समुद्रों के नीचे क्या है, कितनी गहराई है और वहां क्या हो रहा है, ये पूरा ज्ञान भी आज तक हमें नहीं प्राप्त हुआ है। तो हम सब इतने आगे बढ़ चुके हैं विज्ञान के रास्ते में, फिर भी हमें पृथ्वी के ऊपर जो समुद्र हैं उनका पूर्णतया ज्ञान नहीं है। तो ये बेचारे मेंढक की बात तो क्या है। तो मेंढक के कल्पना के बिल्कुल बाहर थी ये बात कि समुद्र में कितना जल हो सकता है। ये बेचारा दूसरा आदमी, दूसरा मेंढक जो था वो समझाने का बहुत प्रयास कर रहा था, नहीं नहीं 4 गुना ज्यादा नहीं, 10 गुना ज्यादा नहीं, 100 गुना ज्यादा भी नहीं, कोई आंकड़ा लगा ही नहीं सकते हम, इतना ज्यादा पानी समुद्र में है। तो ये कूप मंडूक न्याय का प्रयोग हम करते हैं ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जो अपने संसार के सीमित अनुभव के आधार पर भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और जब ये वो सुनते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ क्या है ये समझने के लिए वो भगवान की शक्ति की तुलना अपने शक्ति से करते हैं। अरे भगवान होंगे ना शक्तिमान, ठीक है, लेकिन हमसे कितनी ज्यादा शक्ति होगी उनकी, 2 गुना 10 गुना 100 गुना। जैसे वो कुएं में रहने वाला मेंढक सोच रहा था ना कि समुद्र में कितना ज्यादा जल होगा, 2 गुना 4 गुना 10 गुना, लेकिन कोई अंक कोई आंकड़ा नहीं लगा सकते हम। श्रील जीव गोस्वामी हमारे संप्रदाय के बहुत महत्वपूर्ण आचार्य रहे हैं, बहुत बड़े दार्शनिक और विद्वान, अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की। तो वो कहते हैं कि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। अचिंत्य अर्थात जो हमारे चिंतन के बाहर है, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे भगवान की शक्ति है। और ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए इस श्लोक में ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हे भगवान, भले ही अभी मेंढक की बात दूर रही, बड़े बड़े सबसे बड़े दार्शनिक विद्वान आदि होंगे भी, पृथ्वी लोक की बात भी भूल जाइए, चलिए महर लोक जन लोक तप लोक, यहां बड़े बड़े ऋषि रहते हैं जो इतने बुद्धिमान हैं कि उनकी बुद्धि की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो ऐसे बुद्धि जीव भी आपके गुणों की गणना नहीं कर सकते हैं, यद्यपि भले वो पृथ्वी के में कितने परमाणु हैं उनकी गणना कर सकें, हिम में कितने कण हैं उसकी गणना कर सकें, सूर्य आदि अन्य ग्रहों के ज्योति के कण कितने हैं उनकी भी गणना कर सकें, परंतु आपको समझना, आपके गुणों का अनुमान लगाना ये असंभव है। इसलिए सबसे पहले जब कोई व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है, उसे ये समझना चाहिए कि भगवान की शक्ति अपार है, असीमित है। यह संसार के सीमित शक्ति से भगवान की शक्ति की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे हाथी की तुलना कभी चींटी से कर सकते हैं क्या? चींटी कितनी छोटी है, हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है, यह भी एक सीमित उदाहरण है। भगवत गीता में 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, क्योंकि अर्जुन जानना चाहते हैं कि हे कृष्ण, इस भौतिक जगत में आपके ऐश्वर्य का प्रदर्शन आपने कैसे किया है, किस तरह से आपका के ऐश्वर्यों के द्वारा आप यहाँ पर विद्यमान हैं, आप सर्वव्यापी हैं इस सृष्टि में अपने ऐश्वर्यों के द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण संक्षिप्त रूप में 10वें अध्याय में कुछ जानकारी देते हैं अर्जुन को, फिर अंत में कहते हैं, यद्यत् विभूतिमत् सत्वम् श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम्। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जगत में जो भी विभूतियां मेरी हैं, विभूति विभूति अर्थात ऐश्वर्य, यहां जो भी कुछ विभूति मत दिखाई देता है, जो भी ऐश्वर्यशाली है, जो भी तेजस्वी है, जो भी बहुत सुंदर है, हमें जानना चाहिए कि ये सब मेरे तेज के अंश से उत्पन्न होता है। मम तेजोंश संभवम, मम तेज अंश संभवम, मेरे तेज के अंश मात्र से ये सब कुछ उत्पन्न होता है। अथवा बहु नहीं तेना किम ज्ञाते न तवार्जुना। वो कहते हैं और कहने की क्या आवश्यकता है, विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम एकांक्षेन स्थितो जगत। और इससे क्या कितना मैं कहूं अर्जुन, मेरे तेज के एक अंश से मैं संपूर्ण सृष्टि की बुनियाद बनता हूं। इसलिए भगवान की शक्ति का अनुमान लगाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो फिर यदि कोई अगली बार आके कुछ कहे कि ये व्यक्ति सोना उत्पन्न कर रहे हैं, विभूति उत्पन्न कर रहे हैं, तो इनको भगवान बनाओ, पानी पे चल सकते हैं, तो ये भगवान हैं। भगवान जब रामायण की समय हम देखते हैं, पत्थरों से उन्होंने पुल बनाया, सेतु बनाया, समुद्र को पार किया, लंका तक पहुंचे वानर सेना, तो वो पत्थर तैर रहे थे पानी के ऊपर। तो हमारे दृष्टि से तो बहुत चमत्कार की बात है कि पत्थर कैसे तैर रहे हैं पानी के ऊपर। तो हमारे दृष्टि से, हमारे शक्ति और क्षमता की तुलना से ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, परंतु भगवान की दृष्टि से, भगवान की शक्ति की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। मम तेजोंश संभवम, भगवान केवल छोटे छोटे पत्थर नहीं, बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े ब्रह्मांडों को तैराते हैं आकाश में। तो ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मांडों को आसानी से तैराने वाले जो भगवान हैं, उनके लिए एक छोटा सा पत्थर पानी में तैराना कोई बड़ी बात है? नहीं, हमारे लिए बड़ी बात है, परंतु भगवान के लिए बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये कूप मंडूक न्याय से हम समझ सकते हैं कि दुनिया में लोग कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। तो कभी भगवान की शक्ति और हमारी शक्ति में कोई तुलना करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि भगवान को समझने के लिए मानसिक चिंतन का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। मेरे राय में ऐसा हो सकता है, मेरे राय से ऐसे हो सकता है, भगवान ऐसे हो सकते हैं, इससे कुछ नहीं लाभ मिलेगा। भगवान को बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे हम। हमें भगवान के वाणी से, भगवद गीता से, उनके शुद्ध भक्तों की वाणी से, जैसे कि श्रीमद् भागवत की जो स्तुतियां हैं, ब्रह्मा जी जैसे श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, ऐसे हमारे ग्रंथों से हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक भी क्यों ना हो, जब वो लोग अपने मानसिक तर्क से ऐसे विचारधारा सामने रखते हैं कि भगवान का धाम नाम का कोई चीज स्थान नहीं है, भगवान है नहीं, तो ये भी कूप मंडूक न्याय है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कई ऐसे दार्शनिक भी होते हैं जो कि निराकारवादी होते हैं, और उनके समझ के बाहर है ये बात कि भगवान भी कोई एक व्यक्ति हो सकते हैं। भगवान का व्यक्तित्व है, भगवान का एक सुंदर रूप है, वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपने अनुभव से सीमित हैं। और वो सोचते हैं कि देखो, यहां हम दुनिया में रूप देखते हैं, व्यक्तित्व देखते हैं, और ये सब सीमित हैं। तो यदि भगवान का रूप होगा, यदि भगवान का कोई व्यक्तित्व होगा, तो वो भी सीमित होगा, और भगवान तो असीमित होने चाहिए। इसका मतलब है कि भगवान का कोई रूप और व्यक्तित्व नहीं हो सकता। तो ये भी है कूप मंडूक न्याय। हमारा अनुभव इतना छोटा है, और इस छोटे अनुभव से जो भी हम कुछ जान सकते हैं, उसके आधार पर हम कुछ तर्क करते हैं कि भगवान ऐसे होंगे, ऐसे नहीं होंगे। परंतु हमें चाहिए कि हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करें, और वो भी सही गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। फिर हम ये कूप मंडू के न्याय के शिकार नहीं बन जाएंगे। हमें बाहर निकलना है, देखना है बाहर आके कि दुनिया क्या है। इस तरह से यहां पर ब्रह्मा जी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान कहते दे रहे हैं। श्रील सनातन गोस्वामी आगे यह भी बतलाते हैं कि भगवान हर जीव के लाभ हेतु एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इस सृष्टि में असंख्य जीव हैं, अतः भगवान अनंत गुण प्रकट करते हैं। इस तरह प्रत्येक बद्ध जीव भगवान को विशिष्ट रूप से जान सकता है। वही श्री कृष्ण एक रत्न के बराबर है। जब रत्न को एक दृष्टि से देखा जाता है तो रत्न का रंग एक प्रकार का लगता है, जब रत्न को दूसरी तरह से देखा जाता है तो उसका रंग अलग दिखाई पड़ता है। यह है वैदुर्य मणि। जैसे जैसे सूर्य के किरण उसके ऊपर पड़ते हैं वैसे वैसे अलग अलग दिशाओं से देखने से उसके रंग अलग अलग प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार से भगवान के असंख्य गुण हैं, परंतु जैसे जैसे उनके भक्त उनसे बर्ताव करना चाहते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं और किसी एक तरह के गुण को पसंद करते हैं, तो भगवान उस भक्त के सामने उस गुण को प्रकट करते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने असंख्य भक्तों के लिए असंख्य गुणों का प्रदर्शन करते हैं। ये हैं भगवान। श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला की चर्चा करते हैं कि कैसे उन्होंने ऐसे अपने अद्भुत दिव्य गुणों का प्रदर्शन वृंदावन में किया। गोपियों के साथ में, माता यशोदा और नंद महाराज के साथ में, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में, गौओं के साथ में, असुरों के साथ में भी एक के बाद एक ऐसे अद्भुत कार्य भगवान श्री कृष्ण ने प्रदर्शित किए। सारे के सारे जितने भी दिव्य रस हैं उनका आस्वादन किया वृंदावन में श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं, दिव्य रसों का आस्वादन करने वाले लोगों में से सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के शरण को हमें ग्रहण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, और ये बिल्कुल सही है कि भगवान महान है, परंतु कितने महान है ये जानने के लिए हमें गीता और भागवत पढ़नी चाहिए। कितने महान है, जैसे यहां ब्रह्मा जी जब बता रहे हैं तो हम धीरे धीरे से अनुमान लगा सकते हैं ब्रह्मा जी ऐसी स्थिति भगवान कृष्ण की कब कर रहे हैं, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, जब ब्रह्मा जी ने अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था श्री कृष्ण के सामने, और श्री कृष्ण ने मजाक में ही अपने ही ऐश्वर्य का एक लेश मात्र प्रदर्शन किया और ब्रह्मा जी इतने भ्रमित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए कि फिर उन्होंने श्री कृष्ण के सामने आके क्षमा याचना की और श्री कृष्ण की स्तुति की। जब ब्रह्मा जी को नहीं पता चलता कि भगवान कितने महान हैं तो हम साधारण बद्ध जीव कैसे जान पाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी जैसे महान भक्तों के स्वयं के अनुभव से, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वाणी के द्वारा भी हमें कुछ एक झलक मिल सकती है भगवान के महानता के बारे में। तो केवल भगवान महान है इतना कहना सही है, परंतु काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हमें आगे चल के ये भी जानना चाहिए कि कितने महान भगवान हैं। और प्रभुपाद जी आगे भी कहते हैं कि जब हम जानने लगते हैं कि भगवान कितने महान हैं और हमारा ज्ञान भगवान की महानता के संदर्भ में बढ़ने लगता है तो हमारा आकर्षण भी भगवान के प्रति बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है वैसे वैसे प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है। देखिए, जब कोई बहुत ही ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं संसार में जो बहुत ऐश्वर्यशाली होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बलवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं इत्यादि, तो वो लोगों को आकर्षित करते हैं। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि हर एक समाचार पत्र में प्राय कहीं न कहीं ऐसे कितने सारे खबर छपे हुए होते हैं सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में, ऐसे चमक धमक की जो दुनिया के सितारे हैं उनके बारे में, क्योंकि लोग ये सब जानना चाहते हैं, ऐसे लोगों से वो आकर्षित होते हैं, उनके गुणों के बारे में वो सुनना चाहते हैं, उनके कार्यों के बारे में सुनना चाहते हैं, इससे उनका आकर्षण उनके प्रति और बढ़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम हमारे जीवन में हृदय में जागृत करना चाहते हैं, तो हमें भी भगवान की महानता के बारे में सुनना चाहिए। भगवान कितने महान हैं, भगवान के दिव्य गुणों के बारे में सुनना चाहिए कि भगवान के कितने सुंदर दिव्य गुण हैं, असंख्य गुण हैं। जब भगवान अपने लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं तो अपने इन दिव्य गुणों का प्रदर्शन भी करते हैं। भगवान की करुणा, भगवान का सौंदर्य, ये सारे गुण भगवान के प्रकट होते हैं, फिर भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ने लगता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की महानता के बारे में हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए गीता, भागवत, इन ग्रंथों को पढ़ना, सतत चिंतन मनन आदि करना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो कौन सा न्याय आज का था? कूप मंडूक न्याय। पिछले रविवार को कौन सा था? सुप्तोत्थित न्याय, सुप्त और उत्थित, सुप्तोत्थित न्याय, और इस बार कूप मंडूक न्याय। अगले रविवार को और किसी न्याय सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें चाहिए कि बद्ध अवस्था में साधारणतः सभी इस अंधे कुएं में पड़े हुए होते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि संसार एक कुएं के समान है, और इस कुएं में रहकर हम केवल संसार में रह के अनुभव करके यहाँ का भोग लगाना चाहते हैं और सोचते हैं कि यही सब कुछ है। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी कूप मंडूक न्याय का और एक उदाहरण देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवद गीता का नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं, घबराते हैं। आप उनके पास जाएंगे, कहेंगे कि भाई आओ सत्संग में आओ, कुछ प्रवचन सुनो, ये भगवद गीता पढ़ो, तो वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान यदि प्राप्त हो जाए तो फिर हमें इंद्र तृप्ति, भोग आदि सब छोड़ना होगा। जब संसार में रहते हैं तो हम भ्रम में रहते हैं, मोह में रहते हैं, विस्मृति की अवस्था में रहते हैं। तो हम विस्मृति की अवस्था में रहना चाहते हैं क्योंकि अपने भोग को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब आके कोई हमसे कहे कि गीता के प्रवचन में आना, तो नहीं नहीं नहीं, हमारा भोग छूट जाएगा। आज सुबह को हम कोई भक्तों से चर्चा कर रहे थे तो भक्त बता रहे थे कि जब हम लोगों के पास जाते हैं तो हरे कृष्ण में आने के लिए डरते हैं, क्योंकि सबसे पहले चीज जो छूट जाती है वो चाय, और लोग चाय को छोड़ना नहीं चाहते। चाय से इतनी आदि हो गई हैं, इतने अभी नशा ही बन गया है वो उनके लिए, चाय के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो चाय छूट जाएगी, इसलिए इस अनमोल रत्न को छोड़ देते हैं चाय के लिए, कॉफी के लिए। जब पहली बार हम एक ऐसे स्थान में गए थे जो समुद्र के तट में है, तो हमने पूछा था भक्तों से कि हम क्या कहें, बताइए कौन से विषय के ऊपर हम कथा करें। उन्होंने कहा कोई भी विषय के ऊपर आप करिए, लेकिन एक बात अवश्य मत कहिए। क्या बात है? कि आप मछली मत खाइए, ये मत बोलिए, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि हरे कृष्ण में आके हम मछली छोड़ देंगे तो आना बंद कर देंगे, नहीं आएंगे। तो क्योंकि लोगों को अपने भोग और अपने संसार के अनुभवों से इतना आकर्षण है, इतनी आसक्ति है, इसलिए वो कृष्ण भक्ति में नहीं आ सकते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहरत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जब भोग या ऐश्वर्य के प्रति बहुत तीव्र आकर्षण रहता है, हमारे हृदय में आसक्ति बहुत ज्यादा रहती है, तो जो एक एकाग्रता चाहिए भगवान के प्रति सेवा करने के लिए, आस्था रखने के लिए, वो नहीं रहती है। तो लोग अपने छोटे से कुएं में ही रहना चाहते हैं, संसार के कुएं में, संसार के कुएं से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं कि देखो भगवान का धाम है। ये संसार के भोग के अतिरिक्त भी एक और सुंदर जीवन है, भगवान कृष्ण की सेवा और भक्ति का जीवन। लेकिन नहीं, कूप मंडूक न्याय, तो मंडूक में वो अपने कूप में रहना चाहते हैं। आहुष्चते चते नलिन नाभ पदार विन्दम योगैश्वरे हृदि विचिन्त्य मगाद बोधे। गोपियां प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, हम तो छोटे छोटे गांव के रहने वाले महिलाएं हैं, और बड़े बड़े जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, योगैश्वर हृदि विचिन्त्य नगाद बोध अगाध बुद्धि वाले, बहुत बड़े बड़े विशाल बुद्धि वाले ज्ञानी तपस्वी योगी आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी तपस्या करते हैं, परंतु हम सब गांव में रहने वाले, हम ये सब क्या जाने? हमने तो न तपस्या की है, न हमने कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त किया है, फिर भी हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि यही चरण कमल उदित हो जाए हमारे हृदय में। आहुष्चे नलिन नाभ पदार विंदम योगैश्वरे हृदि विचिन्त्य मगाद बोधे। और आप भगवान श्री कृष्ण हमें इस कुएं से निकालने के लिए बाहर आए हैं। गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च भक्त हैं, जब उनकी विचारधारा ऐसी है तो हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए? तो हमें भी कुएं में रहना नहीं चाहिए, और कुएं से बाहर निकलने के लिए वो रस्सी पकड़नी चाहिए। रस्सी कौन सी है? चार रस्सियां होती हैं कुएं के अंदर, चार जो वैष्णव संप्रदाय होते हैं ना, तो रस्सी को पकड़ के हमें ऊपर उठना है, कुएं के बाहर आना है। रस्सी है, दूरी रहे, हम कुएं में ही ठीक हैं, तो ये कूप मंडूक न्याय हो जाएगा। तो हमें इस रस्सी को पकड़ के हमारे अंध कुएं से बाहर निकल के भगवान कृष्ण की भक्ति के सुंदर जीवन का अनुभव करना चाहिए। इसी में सच्चा सुख है, हमारा सही कल्याण है, जीवन की सफलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है क्या?
आप सूत्रों के बारे में बता रहे थे, आजकल इंटरनेट व्हाट्सएप फेसबुक पर एक तरह के सूत्र जो बहुत ज्यादा फैलते हैं वो है ये प्रेरणा सूत्र, मोटिवेशनल कोट्स।
अच्छा,
तो इन्हें हम काफी पढ़ते हैं, शेयर भी करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि साधक भक्त के जीवन में भी प्रेरणा तो बहुत आवश्यक है, हमें अपने आप को प्रेरित रखना है, तो ये जो मोटिवेशनल कोट्स है हमारे लिए कितने हद तक आवश्यक है, कितना हमें रुचि लेना चाहिए? क्योंकि मन में प्रश्न ये आता है कि इनमें जो हम पढ़ते हैं कई बार हमें गीता भागवत में ये सब प्रेरणा नहीं मिलती है, तो ये ज्यादा अच्छे लगते हैं।
क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम पढ़ते नहीं। कितने सारे प्रेरणा स्रोत, ऐसे विषय हैं, वाक्य हैं, सूत्र हैं, भागवत में, भगवत गीता में बहुत सारे हैं। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को यदि हम पढ़ें तो इतने सारे हमें रत्न मिल जाएंगे, सूत्र रत्न। हाँ, वैसे अच्छी कोई बातें बाहर से भी हमें सुनाई पड़े तो फिर ठीक है, उनको अवश्य हम स्वीकार कर सकते हैं। वेदों में बताया गया है कि कूड़ेदान से भी, कचरे गंदे स्थान से भी कोई सोना मिले तो उस सोने को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी तथा कथित निम्न श्रेणी के जन्म वाले व्यक्ति से कोई अच्छी बातें सुनने में आती हैं तो स्वीकार कर लेना चाहिए।
तो इसलिए कोई बाहर की दुनिया में से भी कोई ऐसी अच्छी बातें कहते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं तो ठीक है, स्वीकार कर सकते हैं, परंतु ये हमारे प्रेरणा के प्रमुख स्रोत नहीं हो सकते। हमारे लिए प्रेरणा के लिए प्रमुख जो स्रोत है वो है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि। इनको जब हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इनके सूत्रों को अच्छी तरह से जान जाएंगे, और फिर एक आध बार यहां वहां से कोई कुछ एक आध कुछ मिल जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें प्रेरित करने के लिए केवल बाहर के सूत्रों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वो उन लोगों के लिए है जिनके पास गीता या भागवत का आश्रय उपलब्ध नहीं है। जब हमारे पास है गीता और भागवत और ये सब उपलब्ध हैं, हम सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो संसारी सूत्रों का आश्रय इतनी मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत ले सकते हैं।
एक और प्रश्न, हमने भक्त ने पूछा था एक प्रवचन के बाद, प्रवचन का जो विषय था काफी टेक्निकल था, तो उन्होंने प्रश्न यह पूछा था कि शास्त्रों में भगवान के बारे में इतना गहराई से इतना सारा ज्ञान दिया हुआ है, ये सब हमारे लिए आवश्यक है क्या? हाँ, जैसे कृष्ण लीला, ये हमारे चतुर्गुण के विषय में प्रवचन था, तो हम उन्हें ठीक से समझा नहीं पाए। उनका प्रश्न था कि प्रभुपाद कहते हैं हम जब और सोलह माला चार नियम से भगवतम जा सकते हैं, तो ये सब मेरे लिए आवश्यक है क्या? तो ये आवश्यक शब्द की क्या परिभाषा है, कैसे समझ सकते हैं कितना आवश्यक है भगवान का ज्ञान हमारे लिए?
आवश्यक है। देखिए, केवल सोलह माला जप और चार नियम का पालन करें, वो केवल शब्द बड़ा भारी है। केवल सोलह माला, आजीवन केवल सोलह माला करते रहना आसान बात नहीं है। आसान है? कितने लोग करते हैं? तो पहली बात तो ये है। और केवल सोलह क्यों, फिर बढ़ाना चाहिए और भी। और इतना ही नहीं, जो जप करने की या कीर्तन करने की गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, वो भी बहुत आवश्यक है। हम सोलह माला कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं? केवल ऐसा नहीं कि हम माला फेर रहे हैं, बस घुमा रहे हैं माला और सोलह माला हो गए यांत्रिक ढंग से, चलो आज के जो माला से हम मोक्ष हमें मिल गया, सोलह माला कर दिए, फिर बाकी 22 घंटे में भगवान को भूल जाना, नहीं। ये जो भी श्रवण आदि हम करते हैं भागवत से, भगवत गीता से, इससे हमें रस मिलता है, इससे एक रुचि प्राप्त होती है, इससे हृदय का शुद्धिकरण होता है, इससे वो हमें योग्यता प्राप्त होती है, वो एक स्वाद मिलता है जिसके द्वारा हम हरि नाम को अच्छी तरह से ले पाते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि जब हम अच्छी तरह से कैसे करें, जो 2 घंटे का समय लगता है ना जब करने के लिए, तो 2 घंटे में हम ऐसे क्या चीजें करें जिससे कि जब अच्छी तरह से हो जाए हमारा। ये विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 घंटे जो हमारे जप के लिए होते हैं, हम कैसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें ताकि जप बढ़िया हो जाए। परंतु और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके ऊपर भी हमें थोड़ा चिंतन करना आवश्यक है, और वो है कि बाकी के 22 घंटों में हम क्या करते हैं। तो हमारी जो जप की गुणवत्ता है वो केवल उस 2 घंटों के ऊपर निर्भर नहीं है, बाकी के जो 22 घंटे हैं उन पर भी निर्भर है। यदि बाकी के 22 घंटों में हमने कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण के वाणी को सुना, पढ़ा, चिंतन मनन किया इन विषयों के बारे में, तो कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। ऐसे कृष्ण भावनामृत के अवस्था में जब हम जप करेंगे तो हरिनाम को वास्तव में ले पाएंगे, हरि नाम का आश्रय ले सकेंगे। केवल सोलह माला, ये केवल शब्द को बड़े ध्यान से हमें लेना चाहिए, ये केवल नहीं है। और हमारे जप को हमें और भी अच्छा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो यदि ये हमारे लिए आवश्यक नहीं होते तो प्रभुपाद जी ने ही हमें इतने सारे ग्रंथ क्यों दिए होते। जब ऐसे भक्त कहते हैं कि केवल 16 माला और 4 नियम का पालन करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं, तो फिर यह भी प्रश्न आता है कि वही जो श्रील प्रभुपाद जी हैं उन्होंने इतने सारे ग्रंथ क्यों लिखे, इतने सारे ग्रंथों का अनुवाद किया, तात्पर्य लिखे, इतने सारे प्रवचन आदि दिए, क्यों किया है? हमारे लिए किया ना, ताकि हम सब पढ़ सकें, इन विषयों के ऊपर हम सब चिंतन मनन कर सकें। तो यहां पर जैसे प्रवचन में हम बता रहे थे ना कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना हम भगवान की महानता को जान पाएंगे उस मात्रा में हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे और आसक्त हो जाएंगे, जिसके द्वारा हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो जब हम ये चीजें नहीं पढ़ेंगे तो भगवान कितने महान हैं, भगवान के कितने सारे असंख्य दिव्य और सुंदर गुण हैं, वो हम नहीं जान पाएंगे। जब नहीं जान पाएंगे तो उतना आकर्षण भगवान के प्रति नहीं हो पाएगा, फिर हरिनाम भी ठीक से नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमारे आचार्यों ने जो एक पद्धति बनाई है उनका पालन हमें करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा है कि 5 चीजें हैं साधन के, 5 साधन भक्ति के अंग हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन। सकल साधन श्रेष्ठ ए 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्मा ए 5 अल्प संग। तो क्या मतलब है इसका? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये 5 साधन भक्ति के अंग बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका लेश मात्र स्पर्श करने से भी व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। तो कौन से हैं ये 4 चीजें, 5 चीजें? एक है साधु संग, भक्तों के संग में आना। दूसरा नाम कीर्तन, कीर्तन में जब भी आ जाता है। तीसरा भागवत श्रवण, भागवत में गीता, चैतन्य चरितामृत ये सब भी आ जाते हैं। फिर मथुरावास, मथुरावास अर्थात मथुरा मंडल में वास यदि नहीं हो पाए तो मंदिर में ज्यादा से ज्यादा आना, यहाँ सत्संग में आना, अपने घर को भी वृंदावन बनाना, अपने हृदय को वृंदावन बनाना। और फिर श्री मूर्ति र श्रद्धाय सेवन, भगवान के अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। तो यदि प्रभुपाद जी ने कहा और कहा बिल्कुल कि 16 माला जप और 4 नियम का पालन करना चाहिए, यदि इतना ही हमें करना होता तो फिर भगवान ने ऐसे मूर्ति पूजा, सेवा पूजा के लिए क्यों व्यवस्था की, बड़े मंदिर क्यों बनाए, इतने सारे ग्रंथों को क्यों उन्होंने छापे, है ना? तो इसलिए हमें चाहिए कि भागवत, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता आदि का पठन, श्रवण, अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए। और जो व्यक्ति पठन करेगा ऐसे, निश्चित ही वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। अभी भक्ति शास्त्री आप सब कर रहे हैं ना, आप में से कई भक्त कर रहे हैं, कितने भक्त अभी कर रहे हैं आप भक्ति शास्त्री? कई भक्त कर रहे हैं। तो देखिए कितने गंभीरता पूर्वक भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ईशोपनिषद आदि को आप पढ़ रहे हैं। इससे हमारी हमें प्रेरणा मिलती है, हमें एक ताकत मिलती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इतना लंबा सवाल है, संक्षेप में सवाल कीजिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है?
हाँ। कभी-कभी कुछ विषय ऐसे होते हैं शास्त्र में जिनके इनको पढ़ के ये समझ में नहीं आता है कि हमारा इसके साथ क्या कनेक्शन है, हम वो महसूस नहीं कर पाते, तब उसमें वो रुचि नहीं आती है। जैसे कृष्ण लीला में भी लग सकता है, ठीक है कृष्ण गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, मेरा उसमें क्या कनेक्शन है, या भगवत के कुछ जो बहुत टेक्निकल विषय जैसे पांचवा स्तर या और भी कुछ लेते हैं, तो हम अपने आप को वहां पर देख नहीं पाते कि हमारा इसके साथ क्या रोल है, तो थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है।
जब हम भगवान के रास या भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारा इससे क्या संबंध है, यह प्रश्न है। संबंध ये है कि हृदय का शुद्धिकरण होता है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नामों का गुणों का आदि श्रवण होता है तो हृदय के अंदर जितने भी अनर्थ हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। भक्तिर उत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापया, भक्ति का उदय होता है। कृष्ण पूरे परम पुरुष है, जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम सुनते हैं उनके लीलाओं का श्रवण करते हैं आदि, तो जितने भी दुर्गुण हमारे हृदय में हैं वो साफ हो जाते हैं और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। परंतु इन सब लीलाओं को सुनकर इनकी नकल हमें नहीं करनी चाहिए, परंतु श्रवण करके हमारे भगवान कितने महान हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कितनी अद्भुत हैं, कितनी सुंदर हैं, ऐसे यदि भावना हमारे मन में उत्पन्न हो जाए तो इससे ज्यादा फायदा क्या चाहिए। एक बार एक भक्त हमसे प्रश्न पूछ रहे थे कि एक जो कक्षा हुई थी, क्लास हुआ था, उसमें थोड़े दार्शनिक तत्व ज्यादा थे उस क्लास में। पूछे हमें ये सब फिलॉसफी या दार्शनिक तत्व पढ़ने से क्या लाभ, कोई प्रैक्टिकल बातें आपको बतानी चाहिए जो व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आए। तो हमने कहा कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि आप क्लास में बैठकर सुनें, क्योंकि ऐसे सुनने से हृदय साफ होता है। हृदय साफ करने से ज्यादा और कौन सी प्रैक्टिकल बात हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह है कि कैसे हृदय को साफ करें। तो भगवान की लीलाओं के उनके संदेशों को सुन के हृदय साफ हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, ये हमारी पद्धति है। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्ण। श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में उपस्थित सभी भक्तों का बहुत हार्दिक स्वागत है।